आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोलिए यहूदा। ये पुस्तक समाप्त करेंगे। पिछले 4-5 हफ्ते जितना भी हम लोग ने सीखा, आशा है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया। इस हफ्ते कोशिश करेंगे 24 और 25 पद थोड़ा ध्यान से अध्ययन करके समाप्त करें और परमेश्वर का स्तुति करें।
कुछ समय में हम लोग पढ़ेंगे यहूदा 24 और 25 पद। एक लेखक ने कई बार इस उदाहरण को दिया। एक छोटा बच्चा अपना पिताजी का हाथ पकड़कर
आगे चलने समय कुछ समय कुछ दूर गया, वो लड़का गिर गया। फिर पिताजी ने उसको उठाया,
पिताजी का हाथ पकड़ा, फिर कुछ समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, फिर गिर गया, फिर पिताजी ने उठाया, उठा के फिर आगे बढ़ने लगा। तो कुछ समय चले फिर ऐसा ही हुआ। आप लोग जितना लोग पास बच्चे होंगे, अगर मान लीजिए बच्चे आपके हाथ पकड़ के चलते, आप लोग कहेंगे नहीं नहीं रुको रुको मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तो बेटा ने पिताजी से कहा पापा आप मेरा हाथ पकड़। तो पिताजी ने उनका हाथ पकड़ा, वो लड़का कभी गिरा नहीं। वैसे ही कई बार हो सकता है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बहुत गहराई नहीं है, नहीं तो मजबूत नहीं, फिर भी हम पिता का हाथ पकड़ के हम आगे चलते। लगता है कि कई बार हम गिर जाते हैं, हम गिरेंगे नहीं। और कई बार ये भी होता है, अरे मैं आराम से चल सकता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं, ऐसा भी होता। जब ऐसा होता है हम सोचते हैं कि अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ, मैं अपने आप को मैं खड़ा कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छी रीति से मैं चला सकता हूँ। जब मैं छोटा था, मैं प्रभु को नहीं जानता, उस समय पहली बार मैं बाइबल पढ़ रहा था। जब भी बाइबल पढ़ता हूँ मैं सोचता कि अरे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को नाम मिलना चाहिए, मेरे को आदर मिलना चाहिए। वो मेरा सोच था। परमेश्वर ने उस सोच को बदला और आगे बढ़ाया। कई बार ये भी हो सकता है हम पिता का हाथ छोड़कर भाग भी सकते, पर यहूदा कह रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर का स्तुति करो। क्यों स्तुति करो? क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। कैसे? जो परमेश्वर भूतकाल में जो काम किया हमारे लिए और जो परमेश्वर वर्तमान में जो काम कर रहा अभी जो काम कर रहा और आने वाले दिनों में एक दिन वो करेगा, वो अपना प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। तो उस परमेश्वर को, उस यदि परमेश्वर का काम हमारा जीवन में हुआ है तो यहूदा कह रहे हैं उसका स्तुति कर, क्योंकि वो रक्षा करने वाला परमेश्वर, वो संभालने वाला परमेश्वर, सिर्फ आज नहीं है, भूतकाल में, आज और आने वाले दिनों में। अगर कोई पहली बार आया, नहीं तो पिछले हफ्ते आपको कुछ समझ में नहीं आया, यहूदा संक्षेप में फिर से मैं दोहराऊंगा, यहूदा कौन है, क्या है करके। यहूदा प्रभु यीशु मसीह का भाई और याकूब का भाई, और फिर भी वो कहते हैं कि यीशु मसीह का दास और याकूब की भाई। अगर वो चाहते हैं तो आराम से कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का भाई, पर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं करके, दास हूं। और इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य तीसरा पद में है, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ये कहते हैं, हे प्रियो, जब मैं उस उद्धार का विषय में, मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ उसको लिखने के लिए, उद्धार का विषय में, बड़ी इन्होंने उचित समझा, तीन पद में आप ध्यान दीजिएगा, तीन पद में, उस विश्वास के लिए यत्न पूर्वक संघर्ष करते रहो। किस विश्वास के लिए? जो प्रेरित ने पहले से, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से प्रचार कर चुके हैं, उस उद्धार का विषय, उस विश्वास के लिए यत्न पूर्वक संघर्ष करते रहो। छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं, उस विश्वास के लिए यत्न पूर्वक संघर्ष करते रहना। क्यों ये कह रहे हैं यत्न पूर्वक संघर्ष करना? चार पद में, क्योंकि कुछ ऐसा लोग चुपके से कलीसिया में, अलग अलग कलीसिया में आ घुसे, वे लोग सत्य को तोड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह को आदर नहीं करते हैं अपना जीवन के द्वारा, ऐसा लोग। इसलिए कह रहे हैं, साफ बात है, जो गलत शिक्षक लोग, जो पेड़ों को चुराते हैं कलीसियों से, ऐसा लोगों के लिए यहूदा कह रहे हैं, अगर तुम वचन को जानो, अगर प्रभु यीशु मसीह को जानो, अगर तुम कलीसिया का महत्व को जानोगे, ये जो लोग भेड़ों को चुराते हैं, नहीं तो लोग भड़काते हैं, अलग अलग लोगों से तुम डरोगे नहीं, अलग अलग लोगों से तुम विश्वास नहीं छोड़ोगे, तो प्रभु में बढ़ते जाओगे। ऐसा लोगों को प्रभु छोड़ेगा नहीं, प्रभु छोड़ेगा नहीं। क्योंकि पांच पद में कुछ इज़राइल लोग विश्वास नहीं किया, उनको परमेश्वर ने नाश कर दिया। वैसे ही स्वर्गदूत उस न्याय का दिन के लिए उन लोग को छोड़ा है स्वर्गदूत। परमेश्वर न्याय करेगा जो गलत शिक्षक है, जो झूठे शिक्षक है, परमेश्वर न्याय करेगा। पर जब तक परमेश्वर न्याय करेंगे तब तक ये कह रहे हैं कि 21 पद में उस पवित्र प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। जो आग में फंसे हुए ऐसा लोगों को निकालो। अगर यदि आप लोग सोचते हैं कि कभी कभी अलग अलग आप बाहर जाते हैं, अलग अलग लोग सुनने में आते हैं, अरे वो तो गलत शिक्षा में चला गया, नहीं तो वो गलत काम कर, कुछ लोग भ्रमित हैं, ऐसा लोगों को आग में से निकालो। इसका मतलब आग में हाथ लगाना मतलब रिस्क हो सकता है हमारा हाथ ना जल। फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा लोगों को आग में से निकालो, चपट के निकालो, ताकि उनकी आत्मा भी बच जाए। पर जब तक हम लोग उस परमेश्वर का प्रेम में बनने, अगर परमेश्वर का संबंध, हमारा संबंध ठीक नहीं है, कैसे हम दूसरों को निकालेंगे? अगर हम कमजोर हैं हमारा विश्वास में, कैसे हम दूसरों को सुसमाचार बताएंगे? हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारे खुद की जो जीवन खो जाए और दूसरे बच जाए। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी है। पर यहूदा कह रहे हैं जब अपने आप को, यदि अपने आप को आप रक्षा नहीं कर सकते, बट परमेश्वर रक्षा करेगा। आइए हम जल्दी से 24 पद और 25 पद हम लोग पढ़ेंगे। अब जो ठोकर खाने से तुम्हारा रक्षा करता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, महिमा गौरव पराक्रम एवं अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने सनातन काल से अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमेन आमेन। ये स्तुति का, अगर आपके पास बाइबल है इसमें है आशा का वचन है, नहीं तो स्तुति का गीत। अलग अलग रीति से, चाहे पुराना नियम में है, नया नियम में है, लोग स्तुति का गीत हमेशा गाते आए। यहूदा भी जब ये पुस्तक समाप्त कर रहा है, इसी स्तुति के गीत के साथ यहूदा समाप्त कर रहा है। बहुत कई बार ऐसा होता है बहुत जल्दी से, हाँ अब जो ठोकर खाने से तुम्हारा रक्षा कर सकता है, तो आशीष वचन के द्वारा लोग समाप्त करते हैं। पर अगर इसको गहराई से पढ़ेंगे इसमें बहुत कुछ है। आराम से इस पुस्तक 1 साल हम लोग प्रचार कर सकते। क्यों? यहूदा बहुत अच्छी रीति से पुराने नियम का पुस्तकों को वो जानता है। इसलिए कई बार अगर 5 पद से लेकर अगर 16 पद तक हम देखते हैं, नहीं तो 23 पद तक हम देखते हैं, कई उदाहरण दिया और एक एक उदाहरण को हम लोग देखेंगे पूरा, मतलब आराम से 1 महीने में पूरा बाइबल पढ़ लेंगे हम लोग। बट एनीवे, भजन संहिता में 150 अध्याय है और उसके बाद उसको 5 भाग बांटा गया पूरा भजन संहिता का। हर एक भाग जैसा खत्म होता है जो चाहे दाऊद लिखा है, सुलेमान लिखा है, कोई भी लिखा है, स्तुति का गीत के साथ ये लोग समाप्त करते हैं स्तुति का गीत के साथ। और वैसा ही नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ स्वर्गदूत भी ये स्तुति का गीत गाने लगा उसका जन्म को मनाते हुए। क्यों? ऐसा नहीं कोई आम बात हुआ ये लोग मतलब बहुत जल्दी स्तुति का गीत गा लिया। ये सारे स्तुति का गीत उद्धार का विषय में संबंधित है। कैसे? जो परमेश्वर ने शुरू से जो काम किया उसको लेकर, उसको याद कर ये लोग परमेश्वर का स्तुति गाने लगे। सो वैसे ही पहले तिमोथियस 17 पद में पौलुस कहता है, उस अदृश्य परमेश्वर की युगानुयुग तक महिमा होते रहे। ये पौलुस कह रहा है। अगर पौलुस क्यों कह रहा है, क्यों इस परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर की युगानुयुग तक महिमा होते रहे? पौलुस ने इसी तिमोथियस में क्या, तिमोथियस के पुस्तक में लिखा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। क्या पौलुस का प्रत्युत्तर है? क्योंकि एक समय था पौलुस लोगों को सताता, वो विश्वासी नहीं था, पर एक दिन प्रभु यीशु मसीह का सामना किया, पौलुस का जीवन बदल गया। उसका प्रत्युत्तर, जब तक वो नया जीवन का काम हमारा हृदय में नहीं होगा, इस स्तुति का वचन का हम लोग को कोई इस अर्थ ही नहीं समझ पाते। पूरा दिल से हम परमेश्वर को आराधना कर ही नहीं सकते, बट पौलुस कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस के जीवन को बदला है। पौलुस को मालूम है परमेश्वर ने उनकी जीवन को बदला है। सारे महिमा पराक्रम सब कुछ परमेश्वर को मिले, क्योंकि पौलुस ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने दया दिखाया और पौलुस के जीवन को बदला है। और ये भी कहता है कि हाँ मालूम है परमेश्वर में हर एक दुष्ट के काम से मेरे को बचाता है और उस स्वर्ग के राज में हमको एक दिन शामिल करता है। पौलुस के अंदर वो आत्मविश्वास है। क्या विश्वास? जो प्रभु ने मेरा अंदर जो काम आरंभ किया वही परमेश्वर अंत तक मेरे को संभालेगा, मेरे को रक्षा करेगा और रक्षा कर एक दिन उसके सामने मेरे खड़ा करेगा। वो भी कैसे है? निर्दोष, निर्दोष चेहरा के वो आनंद अलग है। अगर यदि आप नोट्स लिख रहे हैं, मेरे पहले पॉइंट ये है, परमेश्वर जब तक इस पृथ्वी पे है, जब तक इस पृथ्वी पर हम लोग हैं, परमेश्वर हमको संभालता है। एक मैंने जो मसीह यात्रा हम लोग जैसे गाते गीत गाते हैं, यात्री हूँ मैं प्रभु, जैसे गीत गाते हैं, तो जब तक इस पृथ्वी पर है परमेश्वर हमको संभालता है, परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एक दिन परमेश्वर उस स्वर्ग में हमको खड़ा कर, परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा। हम लोग पिछले हफ्ते 24 पर जल्दी से देखेंगे, अब जो ठोकर खाने से तुम्हारा रक्षा करता है। ना, ठोकर खाने का मतलब क्या हुआ? पिछले हफ्ते हम लोग बहुत संक्षेप में हम लोग ने देखा। कई बार हम लोग बोलते हैं, अरे मेरा एक्सीडेंट होते होते मैं बच गए, नहीं तो मैं गिरते मैं बच गए। कई बार कहते हैं कि नहीं कहते हैं हम लोग, से ठोकर खाने से मतलब हम लोग पूरी तरह गिर नहीं गया, बट गिरते उस समय परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई नया व्यक्ति, नहीं तो जो लोग तैरने जाते हैं, एक रक्षक खड़ा होता है, उसका जिम्मेदारी क्या है? ऐसा नहीं कोई अंदर डूब गया तब वो जाके लोगों को निकालेंगे, उसकी आंखें हमेशा सबकी ओर रहे। ऐसा तो नहीं कोई मतलब डूब रहे, जैसा वो लोग डूबेंगे तुरंत वो क्या करेगा? कूदेगा, कूद के उनकी रक्षा करेगा। सो गिरने से, ठोकर खाने से परमेश्वर हमारा रक्षा करता है, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि हम खुद को नहीं बचा सकते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं एक बार गिर गया था पानी में। मैं सोच रहा हूँ, अरे मैं तो ये लाइफ जैकेट तो पहना हूँ, मैं आसानी से मैं बाहर आ सकता हूँ। मेरा लाइफ जैकेट ऊपर आने लगा, जो मैं पहना हूँ ताकि वो मेरे को बचा सकते हैं करके, लाइफ जैकेट मैं ठीक से बांधा नहीं उसको, वो ऊपर आने लगा तो मैं नीचे जाने लगा। तो बिल्कुल मेरा अंदर कोई भी ऐसा शब्द, मैं सोचा कि ठीक है हो गया मेरा काम आज, बट एक भाई जल्दी से आके कूद कर मेरे को बचा के निकाला। तो परमेश्वर का धन्यवाद। मतलब कभी कभी हंसते हैं हम लोग कि हमारा बच्चे भी, अरे पापा गिर गया हो, कौन बचाएंगे उसको। बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस भाई को भेजा, भेज को मेरे को बचाया। तो ऐसा ही जब हमारा पास कोई क्षमता नहीं, हम सोचते हैं कि अरे ठीक है ये तो पानी तो है, मैं तो बच जाऊंगा, बट नहीं, हम बच नहीं सकते। गिरने से सिर्फ परमेश्वर बचाता है। वैसे ही इस संसार, जो दुनिया में अलग अलग चीज हम लोग देखते हैं, जब देखते हैं बहुत जल्दी से मन लगता है कि हम भी उस संसार की तरह, उस तरफ हम लोग भी भागे, क्योंकि संसार बहुत बहुत अच्छा है। और ऐसे कभी कभी इवन जो शैतान का काम होता है, उस समय भी बहुत जल्दी हम लोग गिर जाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। सिर्फ वो ही नहीं है, हमारा जो शरीर चाहता है कि हम पाप में डूब जाए। किस प्रकार की पाप में? चाहे व्यभिचार की पाप में हो सकता है, अलग अलग पाप में हो सकता है। ऐसे समय में भी परमेश्वर हमको बचाता है, परमेश्वर हमको बचाते हैं। वो कैसे है? वचन संहिता 121 तीसरा पद कहते हैं, वो तेरी पैरों को फिसलने नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हमारा पैर फिसल जाए। वो हमारा पैरों पर वो खड़ा करता है ताकि हम उस पाप में फंसे ना। इधर जो गलत शिक्षक लोग क्या कर रहे, अगर एक पद से लेकर हम लोग पूरा 23 पद तक देखेंगे, ये लोग कलीसिया में, नहीं तो जो विश्वासी भाई बहनों को पवित्रता का जगह में ये लोग झूठ सिखा रहे हैं, गलत काम सिखा रहे हैं, नहीं तो सत्य को सिखाने की जगह इन लोग को गलत बातें सिखा रहे हैं। ताकि क्या हो रहा है, लोग पाप की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरा जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं उनका क्या हो रहा है, वो लोग भी विश्वास से धीरे धीरे दूर हो। जब हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, अलग अलग बात सुनेंगे, क्या होगा? उस गलत बातों पर हमारा हाथ पैर मन सब कुछ उस तरफ जाने। यदि हमारा हृदय, हम परमेश्वर का वचन से भरेंगे, ये सारे चीज हमारा पास आने में डरता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है हम लोग को अपने आप को विश्वासी कहना, बट मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए यहूदा कह रहे कि यत्न पूर्वक संघर्ष करते रहो, युद्ध लड़ो, ताकि सुसमाचार को भी बचाओ और पाप से भी बच के रहे। वो यहूदा कह रहा है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ एक दिन का विश्वासी नहीं है, लगातार लगातार हम विश्वास में बढ़ते जाएं। लगातार जो दिन प्रतिदिन हम जैसा समय व्यतीत करते, चाहे कहीं भी अंदर हो, बाहर हो, इस कलीसिया के अंदर हो, चाहे जाने के भी, इस कलीसिया के बाहर जाने के बाद हम जैसा विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए, वैसा कई बार नहीं हो, कई बार नहीं होता। अर्जुन जल्दी पहले कुरिन्थियों 10:12-13 पद पढ़ नंबर 30।
अतः जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है जो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको।
ये बहुत बढ़िया रीति से इधर वर्णन किया। क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बिल्कुल गिर ही नहीं सकता हूँ। कुछ लोग को बातें हम लोग सुनेंगे तो अरे भैया ये तो क्या है यार, बढ़िया विश्वासी है ये कभी भी पाप में गिर नहीं सकता है। अगर यदि ऐसा घमंड भर गया हमारे जीवन के अंदर, वो कतरा है। पहले यूहन्ना 1:9 पद में यदि हम कहते हैं कि हमारा अंदर पाप नहीं है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद का धोखा दे। पर परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि हम अपना पापों से पश्चाताप कर लें, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा सारे पाप क्षमा करने के लिए वो तैयार है। और इधर भी पौलुस कह रहा है, पौलुस कितना अच्छा प्रतिज्ञा है परमेश्वर का। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहे कि यदि तुम परीक्षा में पड़ोगी, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मैं रास्ता खोलूंगा, ताकि तुम उस परीक्षा से बाहर आ सके, उस परीक्षा में ना फंसो करके। परमेश्वर वो कह रहा है, वो वैसा परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है। कुछ लोग होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इन लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। एक बार एक भाई से मुलाकात किया हम लोग, उससे कम से कम 8-10 महीने से हम लोग हर संडे को देखते थे। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि ओह ये तो बहुत अच्छा विश्वास है, क्योंकि ये कलीसिया में समय पे आ रहा है और उसके बाद अपना पैसा दे रहे हैं, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अगर ऐसा सारे काम जब कर रहे हैं तो सब लोग कोई डाउट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर दूसरों से तुलना करेंगे, आप बहुत बढ़िया हैं। समय से पहले कलीसिया पहुंच जाते हैं और सब लोग देने से पहले आप अपना टाइट भी दे देते हैं, पैसा भी दे देते हैं, और लोगों से मिलने भी बहुत बढ़िया, बहुत हंस के मिलते हैं आप। उस भाई भी ऐसे ही करते भाई। एक दिन हम लोग उनसे बैठ के बातचीत करने लगे, तब पता चला वो विश्वासी नहीं है। कई बार कलीसिया में आते हैं लोग, जब पहली स्थल पे अगर उन लोग का जीवन में उद्धार का काम नहीं हुआ, हम उनसे कैसा आशा करेंगे वो विश्वासी का जीवन जिए, वो अपना परिवार का ध्यान रखें, वो अपना बच्चों पर चिंता करें, कैसे हम लोग करेंगे। बट जो सच्चा विश्वासी अंत तक बने रहेगा। दूसरा पत्रस 3:9 पद में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपना प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में देरी नहीं करता, क्योंकि उस समय जो पत्रस जब प्रचार कर रहा था, जो लोग चित्र बित्र हो गया उन लोगों को पत्रस प्रचार कर रहा था, बहुत लोग पूछने लगे, अरे भैया आप तो सालों साल प्रचार कर रहे, ये प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, ये सारे बात कब पूरा होगा। जब पत्रस कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन का, परमेश्वर घड़ी नहीं देखेगा ताकि ओ इस घड़ी के अनुसार मेरे को जाना है अपना लोगों के लिए, और नहीं तो कोई किताब में नहीं लिखता, पर परमेश्वर जरूर आएगा, अपना लोगों को अपना साथ ले जाएगा। बट हाँ, परमेश्वर धीरज रखने वाला परमेश्वर, किसके साथ पत्रस किसको लिख रहा है, विश्वासी लोग, आपके लिए मेरे लिए पत्रस याद दिला रहे हैं, परमेश्वर धीरज रखने वाला परमेश्वर, परमेश्वर दयालु परमेश्वर, परमेश्वर जल्दी अपना लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हमारा रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। बट ये है परमेश्वर क्यों धीरज रख रहा है, किस लिए? सारे मनुष्य पाप से पश्चाताप करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना, कोई भी मनुष्य नाश ना, इसलिए परमेश्वर धीरज रख। एक दिन वो आएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हो सकता परमेश्वर ये बातें सही नहीं, हो सकता परमेश्वर हार गया, बट नहीं है, परमेश्वर नहीं हारा, परमेश्वर धीरज रख रहा ताकि सारे मनुष्य, कई वचनों में लिखा है सारे मनुष्य, मतलब क्या है, मतलब जो लोग परमेश्वर पर विश्वास किया, जो लोग विश्वास नहीं किया, क्या सब लोगों को लेने आएगा? नहीं है, परमेश्वर अपना चुने हुए लोगों के लिए आएगा। इसलिए और हम और आपके पास परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया, जरूरी नहीं है ये जिम्मेदारी देने के लिए, पर हम और आपको जिम्मेदारी दिया ताकि हम दूसरों को सुसमाचार बताएं। ये एक विश्वासी का ये ऑप्शन नहीं है, अरे ठीक है मैं करूंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ये जरूरी है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जाओ जाके सुसमाचार प्रचार करो। हो सकता है कभी कभी हमारे जीवनों के द्वारा हम शुभ संदेश को प्रचार करते, हमारा बोलचाल, हमारा व्यवहार के द्वारा, और कभी कभी प्रभु मौका खोलते हैं ताकि हम प्रभु के वचन को लोगों को सुनाएं। जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है, ये काम के लिए हमारा अंदर इच्छा भी नहीं है, नहीं है तो क्या, मैं हमेशा मैं। जो परमेश्वर ने मेरे लिए उद्धार का काम कर लिया वो काफी है। अगर यदि हम ऐसा सोचते, हम लोग क्या है, जो परमेश्वर ने एक निशुल्क इनाम दे दिया, निशुल्क उद्धार के इनाम दे दिया, हम लोग दूसरों को भी बांटना चाहिए। तो परमेश्वर अपना चुने हुए लोगों के लिए, वो एक दिन आएगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं को हम सब लोग सामने करते जरूर, बट ये सोचेगा आप अकेला नहीं है उसमें, सब लोग अलग अलग रीति से परीक्षाओं को सामना करते, आप अकेले नहीं है। आप ये कभी ये मत सोचेगा क्या मेरे अंदर ही हो रहा है, क्या मैं ही एक इंसान हूँ क्या, एक के बाद पाप में फंस रहा हूँ, नहीं तो कुछ हो रहा है, तो मैं ही है क्या? आप अकेले नहीं है, अलग अलग रीति से अलग अलग जीवनों में परीक्षाएं होके, हाँ कभी वो परिवार की वजह से, कभी बीमार की वजह से, नहीं तो कभी पाप की वजह से। और बहुत से लोग जैसा परमेश्वर को वचन करना कुरिन्थियों में, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोल देते ताकि उस परीक्षा से हम क्या कर सकते हैं, निकल सकते। बहुत से लोग परीक्षाओं को पीछे छोड़कर परमेश्वर में बढ़ गया। हम भी ऐसा कर सकते, हम भी परीक्षा से निकल सकते। जब कोई भी परीक्षा हम सामने कर, परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि वो सहायता करे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए हम बाहर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कई बार अच्छे लोगों से मिलते हैं, कई बार खराब लोगों से मिलते हैं। कौन सा ऐसा सिचुएशन, संदर्भ, नहीं तो लोग, उनकी वजह से मैं परीक्षाओं में पढ़ रहा हूँ, उनके साफ बात है, उनकी वजह से मैं पाप में फंस रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि ये गलत है, भागिए, ये गलत है, ये पाप है, उससे दूर रहिए। जो सही है उसको चुनिए, जो सही है उसको सुनिए, जो सही काम को करिए वचन का आधार पर। परमेश्वर के सामने रोइए, प्रार्थना करिए, प्रभु आप मेरे सामर्थ्य ताकि मैं इस परीक्षा में ना फंसूं, मैं इस पर विजय पाऊं, क्योंकि प्रभु ने विजय पाया। और दूसरा, अगर कलीसिया में अगर यदि, इसलिए हम बार बार आप लोग से प्रार्थना, एक दूसरे बाइबल पढ़िए, एक दूसरे फोन करके हालचाल पूछिए, ताकि हम दूसरों से मदद ले सकें। आप अकेला नहीं। कभी भी आप अपने जीवन में कोई चमत्कार का अनुभव किया? अगर प्रभु आपको बचा लिया, प्रभु अपना मन बदल लिया, वो पहली चमत्कार। कैसे? इफिसियों के 2 अध्याय, हम पाप में फंसे हुए, प्रभु ने उस पाप से हमको निकाल कर अपना ज्योति चमकाया, ताकि हम उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हम जान। ये पहली चमत्कार। दूसरी चमत्कार, आज भी हम प्रभु में चल रहे हैं, वो दूसरे चमत्कार। कितना लोग शुरू किया पूरा नहीं कर पाए, कितना लोग ऐसा है, बहुत से लोग। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारा साथ चलता है। अगर यदि परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं हुआ, ये जो पुस्तक यहूदा का पुस्तक एक बहुत अच्छा ऐसा पुस्तक है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदा और ये सब लोग उनकी भाई लोग रहते थे, उस समय ये लोग विश्वासी नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो गया, उस क्रूस पर बलिदान हो गया और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का भाई लोग उस पर विश्वास किया। जीवन देने के काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सके, सिर्फ परमेश्वर ही कर सके। कैसा इजकेल में नबी कहते हैं कि प्रभु इधर ये जो हड्डी है सब सूखा पड़ा हुआ, प्रभु ये सूखा वाला हड्डी है, बट परमेश्वर कहते हैं जाओ इसको प्रचार करो। जब परमेश्वर को बात को मान के वो प्रचार करता है, प्रचार करने में ये जो सूखे वाला हड्डी में शरीर मतलब स्किन, वो स्किन आ जाता है और उसके बाद उसके जीवन पर। कैसे परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार, क्या सचमुच में हमारा जीवन में ऐसा चमत्कार किया प्रभु ने? परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर सिर्फ वो ही नहीं है, जब तक इस संसार में है परमेश्वर हमारा रक्षा कर। दूसरी बात, एक दिन हम सबको स्वर्ग परमेश्वर का उपस्थिति में वो खड़ा करेगा, और अपनी महिमा के लिए, महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है। जो दूसरे लोग न्याय का सामना नहीं कर पाएंगे, ना पापी धर्मी सभा में बैठ नहीं पाए, सिर्फ वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। कौन लोग? जो निर्दोष है। पुराने नियम में लोग जानवरों को ले जाके बलि चढ़ाते थे, वो परमेश्वर कहते हैं जो मेमना है, जो चाहे कुछ भी, कोई जो कुछ भी जानवर है, परमेश्वर कहते हैं कि इसमें ये क्या, कोई किसी प्रकार की अशुद्ध नहीं होना चाहिए, ये जानवर अशुद्ध नहीं होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, ऐसा जानवर चाहिए परमेश्वर के लिए। बट अच्छी बात यह है, वे लोग हर साल जाके मंदिर में बलिदान चढ़ाते ताकि उनकी पाप क्षमा हो जाए, ताकि परमेश्वर उसका आशीष। पर नया नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान दे दिया। क्यों? ऐसा कौन सा बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने किया? क्योंकि वही एक परमेश्वर निर्दोष निष्कलंक। पहले पत्रस में कहते हैं, पहला पत्रस 18 और 19 पद में, हमारा जो छुटकारा हुआ है, ऐसा नहीं कि उस जो पूर्वजों ने किया उनके कारण से हमारा छुटकारा हो गया, नहीं तो सोना और चांदी से छुटकारा हो गया हमारा, ऐसा नहीं है। उसकी बहुमूल्य लहू से हमको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिलाया। क्यों? वो निर्दोष, वो आया इस संसार में एक पवित्र जीवन जी, जो धर्मी जीवन, जो पवित्र जीवन आपको और हमको जीना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने जिया, जीकर अपना जान दे दिया ताकि हम बच जाएं, हमारा जीवन नाश ना हो, ये जो काम कब से परमेश्वर सोच लिया, इफिसियों 1:4 पर वो उसने उत्पत्ति मतलब उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया ताकि हम क्या पवित्र बने, हम एक दिन उसके सामने निर्दोष होके हम खड़ा कर सके। वो परमेश्वर का काम है। सारे मनुष्य परमेश्वर से रहित क्योंकि पाप का कारण, पर परमेश्वर ने ऐसा दया दिखाया और वो चाहता है कि एक दिन हम उसके सामने आमने सामने, वो भी ऐसा नहीं दूर, आमने सामने निर्दोष बन के हम खड़ा कर सकता हूँ। जिधर पाप नहीं है उधर की नहीं, जिधर संपूर्ण रीति से सिद्ध रीति से पवित्रता है उधर संपूर्ण रीति से आनंद है, वो आनंद देने के लिए। इब्रानियों 12:2, पता है आप लोग इस पद पर कभी विचार किया कि नहीं? मैं जब इस पूरे हफ्ते में पढ़ रहा था अलग अलग पद, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, एक तो कह रहे हैं कि हमारा दृष्टि, हमारा आंखें प्रभु यीशु मसीह के लगाते रहे और उसका सामने जो आनंद रखा है, कौन सा आनंद? उस आनंद के लिए वो क्रूस पर दुख सहा। यहूदा में कह रही अपना महिमा की उपस्थिति में तुम्हें निर्दोष और आनंद करके खड़ा कर सकता है। हमारा आनंद के लिए, हमको एक निर्दोष करके आनंद करके उसके सामने खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंद के साथ, बहुत जरूर बहुत कठिन था, क्रूस पर मरना आसान नहीं था, बट फिर भी उसका सामने क्या था, आनंद। किसकी आनंद हो जाए, हमारा आनंद, हमारा आनंद के लिए वो उस क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बलिदान हो गया, उसके लहू के द्वारा हमको बचा लिया। ये बहुत अद्भुत, जो पाप नहीं जानता परमेश्वर ने उसको पापी ठहराया ताकि उसका जो धार्मिकता हमको मिल जाए। हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग ने कुछ एक बूंद भी हमारा उद्धार के लिए और अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए हम लोग ने कुछ नहीं किया। आज भी जो जिस प्रश्न से हम आते हैं, बहुत बार सोचते हैं कि अरे मैं ऐसा कुछ अच्छा काम करेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं परमेश्वर के सामने मैं अपना खड़ा हो सकता हूँ मेरा अच्छा कामों के द्वारा। नहीं है, हम लोग ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर फिर भी कह रहे हैं मैं अपने आप को, आप कई वजन सहित पढ़िए, अपने आप को मैं हाथों से मैंने बनाया, अपने फिर उसी हाथों से परमेश्वर एक दिन उसके सामने, पिता का सामने हमको खड़ा करेगा। हम लोग कुछ नहीं किया, फिर भी पिता ने हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ा। यदि सच्चा काम हमारा जीवन में हुआ, प्रभु हमेशा हमारा साथ है। 25 पद, उस अद्वैत परमेश्वर हमारा उद्धार करता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमेन। अंत में कह रहे हैं परमेश्वर का स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा की स्तुति करो। क्यों? परमेश्वर सिद्ध है, उसका अंदर कुछ भी पाप नहीं है, वो संपूर्ण रीति से वो पवित्र है, इसलिए कर उसका महिमा की स्तुति करो। सिर्फ उतना नहीं, उसका महानता के लिए स्तुति करो, उसका महानता के लिए स्तुति करो। क्यों? वो सिर्फ राजा ही नहीं है, वो राजा का राजा है, वो सिर्फ प्रभु ही नहीं है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर हमारा साथ है। इसलिए कह रहे हैं उसके महानता के लिए स्तुति करो, उसके महानता के लिए स्तुति करो, और सिर्फ वो ही नहीं, उसकी परिक्रम के लिए स्तुति करो, क्योंकि वो ऐसा राजा है, कभी भी उसका राज में वो गलत नहीं करता, उसका इतना सामर्थ्य है। वो चाहते हैं कि सारे मानव जाति, चाहे जितना लोग अपने चुने हुए लोग, उसके साथ आनंद मनाए, उसके साथ आनंद मनाए, और उसका अधिकार के लिए स्तुति करो। उस स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया है उसके लिए, इसलिए उसका अधिकार के लिए। हम सोचते हैं कई बार वो समझना भी मुश्किल है, कैसा प्रभु यीशु मसीह उसका अधिकार हमारे ऊपर दिखा रहा है, पर वो राज कर रहा है, वो एक दिन आएगा, आज भी राज कर रहा है, हम और आपको संभालना। उसका अधिकार के लिए स्तुति करो, उसका अधिकार के लिए स्तुति करो। सिर्फ उतना ही नहीं, आज उसकी स्तुति करो, क्योंकि आज भी इस क्षण वो हमारा रक्षक है, वो हमारा रक्षक है। एक बार अगर आप याद रख सकते, परमेश्वर हमारा रक्षक है, और परमेश्वर एक दिन हमको उसके सामने खड़ा करेगा। कैसे? पवित्र और निर्दोष ठहरा के खड़ा करेगा। मेरा प्रश्न ये है, आप और आपकी संबंध कैसा है प्रभु यीशु मसीह के साथ? थोड़े ध्यान से सोचे, आपका संबंध कैसा दिन प्रतिदिन? ऐसा तो नहीं हम कोई पाप में संघर्ष कर रहे, पाप से संघर्ष कर, ऐसा तो नहीं हम दिन प्रतिदिन, हम परमेश्वर का वचन पढ़ने का समय नहीं है हमारा पास, हम इतना व्यस्त हैं। आपका संबंध कैसा है? ऐसा तो नहीं जो चीज परमेश्वर से मिलना चाहिए आप उस पर असफल है? परमेश्वर बहुत से आशीष देता है, पर सबसे बढ़कर हम लोग उसके साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? कई बार ये बात भी बोलना बहुत आसान है हमारे लिए, हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, अरे भैया प्रभु बहुत महान है, प्रभु दयालु, पर प्रभु के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं? तीसरी बात, क्या जो प्रभु के लिए आप देना चाहिए आप दे पा रहे हैं? हो सकता है आपका समय, हो सकता है आपका जीवन, हो सकता है आपके धन, आप प्रभु को क्या दे रहे हैं? पर ये मत सोचेगा हम, आप लोग जितना देंगे उतना हमारा उद्धार का, हम प्रभु के सामने बढ़ जाएंगे, उसके लिए नहीं। जो प्रभु ने आपका हम लोग के जीवन में काम किया है उसके प्रति उत्तर, हम कैसे समय व्यतीत कर, चाहे हमारा परिवारों के साथ, हमारे बच्चों के साथ। कई बार मेरे को भी सोचना पड़ता है, क्या मैं इतना व्यस्त हूँ, क्या मैं घर में समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं पिछले हफ्ते एक भाई से बात कर रहा था, उसका 50 साल हो, अभी लगभग 50 साल, अभी उसका बेटा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है। वो कह रहे हैं, भाई मैंने जिस समय मेरे बच्चे के साथ समय देना चाहिए था, दे नहीं पाए। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। अच्छा है, अभी हमारे पास मौका, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, हमारा परिवार के साथ हमारा संबंध कैसा है, हम कितना कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को वचन, परमेश्वर को वचन सिखाने की, और नहीं तो हमारा बच्चे कितना हमसे सीखते हैं, हमारा जीवन जैसा हम लोग घर में जीवन जीते हैं। कई बार बच्चे देखते हैं मेरे मम्मी क्या कर, मेरे पापा क्या कर, कितना उन लोग के लिए हम आदर्श कारण बन। क्या हमारा अंदर जो इच्छा है परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए, परमेश्वर तो प्रतिज्ञा कर रहा है अपना लोगों के लिए, वो एक दिन आएगा, उन लोगों को ले जाएगा, और वो भी कैसा करेगा, निर्दोष। परमेश्वर निर्दोष, हमको भी निर्दोष करके वो उसके सामने, उसके उपस्थिति में खड़ा करेगा। परमेश्वर तैयार, क्या आप और हम तैयार हैं, क्या उस दिन के लिए परमेश्वर को आमने सामने देखने के लिए हम आज से तैयारी कर रहे हैं। उस दिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने इन बातों को नहीं सुना, उस दिन ये नहीं कह सकते कि प्रभु मेरे को वचन पढ़ने का, मैं इतना व्यस्त हो गया, वचन पढ़ने का समय ही नहीं था प्रभु मेरे पास, उस दिन ये नहीं कह सकते। पर परमेश्वर दयालु परमेश्वर, अगर यदि हम परीक्षा में पढ़ते हैं, वो मार्ग खोल देता है ताकि हम उस परीक्षा से उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएं। आइए हम दुआ करें।